जाओ सतनाम श्री हर वाहे गुरु, सतनाम श्री हर वाहे गुरु, वाहे गुरु वाहे गुरु। कुछ लोग आए गुरु तेग बहादुर जी के पास के महाराज, अब तो यवन लोग अपने देश में धार्मिक स्थानों पर भी गड़बड़ कर रहे हैं और अपनी जगह पूजा की तोड़कर वहां अपना वो कुछ बना रहे हैं, मस्जिद मस्जिद। अब क्या होगा महाराज, ये जुल्म हो रहा है उनके शासन में, हम दबे मारे जा रहे हैं। कश्मीर उन दिनों में धर्म क्षेत्र में योग विद्या में उन दिनों में बड़ा मशहूर था, हमारी संस्कृति के प्रचार प्रसार में कश्मीर इलाका बड़ा, कश्मीर के पंडित, कश्मीर के ब्राह्मण, कश्मीर के योगी। राम तीर्थ ने अपने लेख में उल्लेख किया है कि कश्मीर के योगियों से जीसस ने योग सीखा और काशी के विद्वानों से विद्या सीखी। बाद में रोम में आए तो केसर बादशाह ने रोम को सजाया और फिर उनका योग शक्ति जब क्षीण हुआ तो उन्हीं लोगों ने जीसस को क्रॉस पे चढ़ा दिया। राम तीर्थ ने विस्तार से ऐसे प्रवचन करे। तो उस कश्मीर के कुछ पंडितों ने आकर गुरु तेग बहादुर को प्रार्थना की। गुरु तेग बहादुर ने एक लंबा श्वास छोड़ा, बोले यवनों के इस जुलम को रोकने के लिए किसी महापुरुष की बलि चाहिए। सारे सन्नाटा मार गए। तो 9 साल का उनका सपूत गोविंद सिंह बोलते हैं कि पिताजी इस समय देश में महापुरुषों में आपसे बड़ा कौन है, आप ही तो महापुरुष हैं। मानो बेटा बोल रहा है कि पिताजी आप बलि पे चढ़ जाइए। और उस पिता ने इस बेटे को गले लगा दिया कि शाबाश तू ठीक कहता है। लेकिन ये सिखों का गद्दी, गुरु की गद्दी अब तू संभाले। तो 9 साल के गुरु गोविंद सिंह को गुरु तेग बहादुर शिष्यों की सिखों की जिम्मेदारी वाली गद्दी दे गए और 500 सिख ले गए दिल्ली। यार बोले जुलम बंद करो, आप जुलमी को बोले जुलम बंद करो तो बोले आ जा तुम्हें। तो उन सिखों के साथ गुरु के साथ जो जुलम हुआ वो तो इतिहास के पन्ने बताएंगे। तपे हुए तवे पर बिठाकर वे बालू महापुरुष के शरीर पर डालेंगे, कैसे होंगे। जैसे शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी को धोखे से पकड़ लिया और बोला अब हमारे मजहब में आ जा, बोले नहीं आऊंगा, बोले तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा, बोले आंखें निकल जाए तो निकल जाए लेकिन मेरा धर्म तो नहीं निकलेगा मेरे से। तो लोहे के तपे हुए सिखों से उनकी आंखें निकाल ली, बोले अभी भी जिंदा रहना है तो अभी भी हमारे मजहब में आ जा, नहीं तो तुम्हारी खाल खिंचवा देंगे। उनकी खाल खिंचवा दी, आंखें निकाल दी, लेकिन उनसे धर्म छुड़ाने में वे भाईजान सफल नहीं हुए, क्योंकि धर्म अंतरंग है। जब तक आप नहीं छोड़ते अपना धर्म तो दूसरा कौन छुड़ा सकता है। लेकिन जो बेचारे आदिवासी हैं, भोले हैं, जिनको हिंदू धर्म की महानता का पता नहीं, वो लिखा बेचारे फंस जाते हैं। जयराम जी की। तो फिर गुरु तेग बहादुर जी को तो और उनके 500 सिखों को तो कुर्बानियां देनी पड़ी। बाद में गुरु गोविंद सिंह को उन्होंने पकड़ा और ग्वालियर के जेल में बंद कर दिया। मैं तो गोविंद सिंह को धन्यवाद नहीं देता, उनके सिखों को शाबाश देता हूं कि वे सिख ग्वालियर के जेल की दीवालों को मत्था टेकने जाते और ग्वालियर की जेल की दीवालों को चूमते हैं। ऐ सिख ऐ सरदार की कर दे, और बोले असांदे गुरु महाराज है जेल विच, और जिते मेरे संत जना वो था उस सुहावना। बोले और भी कैदी है, लेटरिन है अंदर, बाथरूम है, गंदगी है, नालियां है, और तुसी की कर दे। बोले वो नालियां और गंदगी तुसी गिनते फिरो, असानू तो असादे गुरु महाराज दा तीर्थ स्थान लगदा सी। वो धरती नसीबा वाली जिते मेरे संत जना। आप जहां बैठे हैं यहां पहले पूर्व काल में जाबल्य ऋषि का आश्रम था। जहां ये कार्यालय ऑफिस है वहां उसकी नींव खोदते गए तो राख निकलती गई यज्ञ की। यज्ञ की राख देखने में भी और उस निकालते समय भी प्रसन्नता देती, और शमशान की राख का अपना होता है, यज्ञ की राख का अपना स्वभाव प्रभाव होता है। तो हम खड़े रहकर हम भी निकालते और हमारे सेवक भी, कितनी ट्रकें निकली होगी हम बता नहीं सकते। तो निकालते निकालते ये कार्यालय के अंदर भोंयरा बनाना पड़ा, इतना खड्डा। अभी भी यहाँ पुस्तकें, ये आश्रम के अंदर जो कार्यालय पुस्तकालय है उसके अंदर भोंयरा है, और जहाँ टेलीफोन आप करते हो वहां से भी निकली थी, जहाँ आप ढलान है तो वहां से वो राख निकाली थी। इसीलिए आश्रम में आते ही आप चढ़ के आते ना, हम जाते तो ढलान है, वहीं से खूब निकली थी। तो यज्ञ की राख इतनी सारी निकली तो कितने वर्ष यज्ञ हुआ होगा और कितने बड़े भारी भारी यज्ञ हुए होंगे। और जाबल्य ऋषि बड़े प्रसिद्ध हैं पुराणों में, उनकी बात है। ऐसे संत यहाँ रहे थे, और हम अहमदाबाद में आए थे तो सत्संग करे, फिर नदी किनारे एक जगह मंदिर में ठहरे थे, लेकिन हमको उबान सी लगी कि कहीं एकांत में जाए। जब इधर आए तो मेरे मन में बड़ी अच्छा ही लगा इस धरती पे। तो सेवकों ने बोला, बापू जी आप कभी भी आए इधर एकांत में और ये जमीन में इतनी कुटिया बना देते तो मोक्ष कुटिया, बड़ के सामने जो बनी मोक्ष वो बनाई। फिर मोक्ष कुटिया तो बनाई, लेकिन हम मोक्ष कुटिया में रहने के लिए तो थोड़े आए थे, कभी कभी आएंगे रहेंगे। तो हमारा तो बड़ौदा की तरफ सत्संग था और हम ताला लगा के चले। तो यहाँ आस पास में जंगल ही जंगल था, ये सब कुछ था नहीं, इधर का आश्रम था खाली, और दारू की भट्टियां थी। और उन लोगों का दारू बेचना, दारू बनाना और ताला तोड़ना उसका उनका सज्जनों का पेशा है। कोई एक ऐसी कौम है, हम नाम क्यों ले, जयराम जी की। तो आए और ताला तोड़ दिया। ताला तो तोड़ दिया, मैं आपको सत्य बताता हूं, ताला टूटा लेकिन कमरा दरवाजा नहीं खुला उनसे। ताला टूटा और हॉल ड्राफ्ट हो जाए वो फंसा हुआ था, हॉल ड्राफ्ट का जो कड़ा जिसमें ताला पड़ता वो निकल गया, लेकिन वो हॉल ड्राफ्ट जो गोल होता है लोहे का डंडा वो चिपका रहा। तब वो लोग मत्था टेक के गए कि ये क्या बाबा है, क्या कुटिया है, अब हमको तो पता नहीं लेकिन धरती का कोई महत्व। फिर धीरे धीरे वो सारी बठियां बठियां भी बंद हो गई और ये तीर्थ का हमको फायदा मिल रहा है, निर्माण हो गया। मुझे कई लोग बताते कि बाबू आप और जगह सत्संग करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ अहमदाबाद मोटेरा में जो सत्संग जमता है वो कुछ निराला ही होता है, ऐसा कईयों का कहना है। और मेरे को भी ऐसा लगता है, इधर जमता खूब है सत्संग, आप लोगों को भी लगता है। तो ये पूर्व काल में तीर्थ भूमि, और यहाँ पिछले जो भी 26 साल हुए करीब, तो यहाँ तो वही हो रहा है, यहाँ तो कोई और तो क्या होगा, हरिओम हरिओम होगा, सीताराम होगा, ओम नमो, या नारायण नारायण होगा। एक आदमी नहीं, दो नहीं, हजारों नहीं, लाखों लाखों दिल यहाँ आके गए होंगे, उसमें कई उत्तम आत्मा भी होंगे, कई संत भी आके गए, कई कई आके गए।